SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
रमज़ान का पावन महीना जारी है. शहादा यानी ईश्वर में श्रद्धा, ज़कात यानी दान, सलात यानी प्रार्थना, सौम यानी उपवास और हज यानी तीर्थ यात्रा इस्लाम के पांच मूलभूत श्रावक धर्म बताए गए हैं. इस्लाम के अनुयायी रमज़ान के दौरान इन्हीं नियमों का पालन कर सवाब यानी पुण्य कमाते हैं. इन नियमों में भी दान का यानी ज़कात का बड़ा महत्व बताया गया है. सिडनी में आधारित दो संस्थाएं, इंडियन माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी इमीसा और साउथ एशियन मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी समा, ऐसी ही दो संस्थाएं हैं जो दान की इस भावना से प्रेरित हैं. जहां इमीसा भारत में अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित है, वहीं समा ऑस्ट्रेलिया में समुदाय के बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था है. जाहिद जमील पेशे से एक बिजनेसमैन हैं और IIT से पढ़े हैं. वे इन दोनों संस्थाओं के अध्यक्ष हैं.
रमजान मुसलमानों के लिए एक परम पवित्र महीना है, मैं कहूँगा, जिसमें हम लोग रोजे रखते हैं यानी व्रत या उपवास रखते हैं जी, और रात में फिर नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और दान देते हैं. और दान के जो इस्लामिक उसके जो शब्द हैं वो ज़कात और सदक़ात देते हैं. तो ये एक पवित्र महीना है. ये इंसानियत का पैगाम देता है. इबादत के ज़रिए हम लोग रूहानी और स्पिरिचुअली बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं और पुण्य कामों में आम दिनों से ज़्यादा हम लोग लगते हैं.
वे बताते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक बच्चे, खासकर मुस्लिम बच्चे, पढ़ाई में पिछड़ गए हैं और प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियां जैसे IAS या IFS में भी उनका अनुपात कम है. वे आगे कहते हैं कि मुसलमान समुदाय का पढ़ाई में ये पिछड़ापन बच्चों को बाल श्रम के कुचक्र में उलझा देता है और इसीलिए उन्होंने इमीसा की स्थापना की.
और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों को वहां से निकालकर स्कूल भेजें और इनकी शिक्षा का इंतजाम करें. तो यही इमीसा ये कर रही है. और इसी सिलसिले में जो आपने कहा कि अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, वो इफ्तार डिनर था, क्योंकि वो रमजान में लोग ज़कात देते हैं तो वो एक अच्छा मौका होता है इस किस्म की अपील करने के लिए.
सैयद असलम शहीर इमीसा के बोर्ड सदस्य हैं. वे इमीसा की कार्य व्यवस्था समझाते हैं.
निचले तबके के रिक्शे वाले, ठेले वाले, ये लोग, अब क्या होता था कि इनके बच्चे स्कूल में जाते नहीं थे और अगर कभी चले भी गए तो इनको कोई घर पे हेल्प नहीं मिलती थी, कोई होमवर्क कराने के लिए कोई इनको सपोर्ट नहीं था. तो क्या होता था, ये सब स्कूल छोड़ के घर बैठ जाते थे और छोटे मोटे काम करते थे. तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना ऐसा किया जाए, इस दिशा में काम किया जाए कि उनको स्कूल के बाद इनको सपोर्ट दी जाए और वहाँ पर उन बच्चों को हम होमवर्क भी करा लें और इनको एक तरह का फ्री ट्यूशन पढ़ाएं, कोचिंग पढ़ाएं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, गणित हो. इस तरह खासतौर पे हमने कहा कि गणित पे और अंग्रेजी पे ध्यान दिया जाए.
सहारनपुर में शुरू हुए पायलट प्रोजेक्ट को मिली अच्छी प्रक्रिया के बाद इस मुहिम का विस्तार किया गया.
तो फिर हमने फिर अगला शुरू किया, लखनऊ में शुरू किया, देहरादून में बढ़ता गया, फिर हैदराबाद, बेंगलोर, एक बोएसर महाराष्ट्र में, वडोदरा गुजरात में, दिल्ली में, एक एक दीनाजपुर एक छोटा सा जगह है वेस्ट बंगाल में। तो हम लोगों के अभी 9 सेंटर चल रहे हैं और इन सेंटर्स में जो टीचर्स हैं हमारे वो शाम को स्कूल के बाद बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमने ये देखा है पिछले सालों में कि टीचरों बच्चों में बहुत ज़्यादा एक तो दिलचस्पी बढ़ी है और बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक इम्प्रूवमेंट सा हुआ है और वो हमारे लिए बड़ा इनकरेजिंग है।
वे आगे बताते हैं,
एक स्पेस चाहिए जहाँ पर एक क्लासरूम तरह का हम बना सकें और वहाँ पर हमने टीचरों को रखा। अब दायरे के इंडिया में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, हमें आसानी से टीचर मिल गए जो कि शाम को पढ़ाते हैं बच्चों को। और उससे फिर हमने ये देखा कि बच्चों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ पढ़ाई की तरफ। तो फिर उसके बाद से जो जो प्रोजेक्ट बाद में शुरू हुए तो उसमें बच्चों ने आना शुरू किया और उससे उनका एक तो फिर वो जो स्कूल छोड़ने की जो एक थी ना प्रक्रिया जो थी कि भाई बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते थे क्योंकि घर में कोई सपोर्ट नहीं है, वो ख़त्म हुई। फिर बच्चों ने पढ़ाई करना शुरू की, फिर वो आगे, और मैंने खुद जाकर अपने साथ देखा है कि किस तरह से उनकी गणित, इंग्लिश, हिंदी किस तरह से इम्प्रूव हुई है, उनकी हैंड राइटिंग किस तरह से इम्प्रूव हुई है।
प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित इस मुहिम में जहां शुरुआत में 30 बच्चे जुड़े थे, वहीं अब संख्या 700 से 800 के बीच है। इमीसा पदाधिकारी ऑस्ट्रेलिया से दान एकत्र कर भारत में ये मुहिम चलाते हैं। हाल ही में आयोजित सालाना इफ्तार डिनर में संस्था ने साल भर के खर्च के बराबर से भी अधिक दान एकत्र कर लिया था। इस वृहद स्तर पर ऑस्ट्रेलिया से ही बैठकर कैसे इमीसा का बोर्ड भारत में प्रबंधन करता है, सैयद शहीर बताते हैं।
अच्छा, ये क्योंकि हम लोग तो ये सारा काम यहाँ से देखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे दो तरह के कोऑर्डिनेटर्स हैं, एक वो लोग जो सिडनी में बैठे हुए हैं और जिनके जिनके जरिए से हम वहाँ पर अपने सेंटर चला रहे हैं, और एक हमारे वॉलंटियर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि उन शहरों में हैं। तो उनका काम होता है बस उनको मॉनिटर करना कि भाई जो टीचर्स हैं वो टाइम पे आ रहे हैं, बच्चे टाइम पे आ रहे हैं, कि बच्चे अगर नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। तो वो सारे के सारे और सारे वॉलंटरी हैं, इसमें वो लोग कोई हमसे चार्ज नहीं लेते, हम उन्हें कुछ पे नहीं करते, और वो जो है उसको देखते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं, वो इम्प्रूवमेंट भेजते रहते हैं, और कभी कभी वो हमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसकी हैंड राइट कॉपी हमें फोटो कॉपी भेज देते हैं कि बच्चों की हैंड राइटिंग देखने के लिए, उनकी गणित में कैसे वो कर रहे हैं वो देखने के लिए हमें वीडियो भेज देते हैं।
जी जी,
और वो सबसे ज्यादा खुशी की चीज होती है हमारे लिए।
जहां इमीसा बच्चों पर केंद्रित है, वहीं समा ऑस्ट्रेलिया में रह रहे दक्षिण एशियाई बुजुर्गों के लिए काम कर रही है। जाहिर जमील बताते हैं।
समा, साउथ एशियन मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये एक ऐसी संस्था है जो कि कम्युनिटी के बुजुर्गों की खिदमत में लगी हुई है, और ये काम जरा पुराना है, ये हम लोग करीब 15 वर्षों से कर रहे हैं। तो ये देखें कि जो दक्षिणी एशिया के बुजुर्ग हैं, साउथ एशिया के बुजुर्ग हैं, उनकी तादाद में काफी तेजी से वो बढ़ी है, लगभग 2000 से, क्योंकि हमारे जो पहली लोग जो आए ऑस्ट्रेलिया वो 1970s में आना शुरू किया, जिसमें काफी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स वगैरह आए, और वो लोग जो आए थे वो 2000-2005 तब तक आते आते वो काफी उन लोगों में से सीनियर्स हो गए, वो लोग रिटायरमेंट ले लिए। तो एक सडन एक नीड हुई कि भई ये इतने सारे लोग हैं और इनके लिए यहाँ पर एक जो एजिंग सेक्टर है ऑस्ट्रेलिया का, वो एक टर्म है कल्चरली अप्रोप्रिएट केयर। तो वो जो यहाँ का एजिंग सेक्टर है वो साउथ एशियन या इस्लामिक कल्चरली अप्रोप्रिएट केयर के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, कोई प्रोविजन नहीं था। तो करी फूड है, हलाल फूड है, फेस्टिवल्स हैं, तो जो यहाँ के नर्सिंग होम्स हैं उनमें वो उसका कोई प्रोविजन नहीं था। तो उस पर्पस से समाने ये फिर ये किया कि भाई ये काम बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों के बारे में ये बताया जाए। और वो भारतीय, वो हिंदू और मुसलमान दोनों का, वो जहाँ तक कल्चरल केयर है वो सिमिलर है।
वे बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी कमीशन ने भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप बुजुर्ग सेवा पर उनकी रिपोर्ट को प्रकाशित किया था।
फिर एक बड़ा चैलेंज जो है वो सोशल आइसोलेशन है हमारे जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि अगर वो अपने बच्चों के साथ भी रह रहे हैं तब बच्चे सब अपने ऑफिस चले जाते हैं, वापस आकर फिर वो अपने बच्चों में अपने मसरूफ हो जाते हैं। तो ये जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बहुत ही सोशली आइसोलेटेड रहते हैं, तो उसके लिए फिर समा रेगुलरली प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है, पिकनिक्स हैं, कल्चरल इवेंट्स हैं, अपने मुशायरे हैं और बहुत से प्रोग्राम मुख्तलिफ किस्म के, और फिर उन सब में इंफॉर्मेशन सेशन होता है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं अभी तक वो यहाँ की जो एज केयर सिस्टम है उसको नहीं समझते हैं और उससे ना फायदा उठाते हैं और एक वो झिझक।
लेकिन दक्षिण एशियाई समुदाय में माता पिता को वृद्धाश्रम भेजना अपने आप में एक वर्जना है, ऐसे में समुदाय में समा का काम और मुश्किल हो जाता है।
हुआ ये कि शुरू में तो हम लोगों के ऊपर थोड़े इल्जाम लगने लगे कि क्या कर रहे हैं आप कि ये जिम्मेदारी बच्चों की है। हमने कहा कि अगर बच्चे नहीं केयर करते हैं तो हम केयर करें, वो जैसे उनके माता पिता हैं वो हमारे भी माता पिता। और जो यहाँ का एज केयर सिस्टम है, देखिए एक वक्त वो आता है जब आपको प्रोफेशनल केयर की जरूरत होती है, वो प्रोफेशनल केयर बहुत जरूरी है। हम घर पर अगर बच्चे इतने अच्छे भी जिसमें के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, तब भी वो प्रोफेशनल केयर अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर वो उनकी सही केयर नहीं हो पाती। तो हम लोगों ने, बल्कि हम लोगों ने ये भी किया, हम लोगों ने जो अपने यहाँ के जो रिलीजियस हेड्स हैं जिनको इमाम कहिए आप, हमने उनसे बात की कि भाई आप इसके बारे में कुछ बताएं, इनको समझाएं, क्योंकि हमारी बात नहीं सुनते।
समाज समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर समुदाय के बुजुर्गों को जोड़े रखता है। कोविड के समय पर करीब 25 कार्यक्रम कर गतिविधियों को बनाए रखा गया और इन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक के साथ साथ धार्मिक रुचि का भी ध्यान रखा गया ताकि बुजुर्गों का मन लगा रहे। समा और इमीसा दोनों ही चैरिटेबल संस्थाएं हैं जो रमज़ान के इस पावन मौके पर दान और सेवा भाव से समुदाय के लिए कार्यरत हैं। ज़ाहिर जमील कहते हैं कि ये जज्बा हर धर्म में मिलता है।
रमज़ान देखिए एक ये एक इंसानियत का पैगाम देता है और वो इंसानियत उसका रिलीजियस बाउंड्रीज से बाहर है, इंसानियत ह्यूमैनिटी है। तो ये और सभी मजाहिब में सभी धर्मों में ये कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट तरीके से जो व्रत रखने का कॉन्सेप्ट है वो सभी धर्मों में होता है। तो इन ये जो इस किस्म की जो पावन चीज़ें हैं उसका सब लोग अपने अपने धर्मों के मुताबिक उसके ऊपर पालन करें, उससे आप लोग बेहतर इंसान बन सकते हैं।
SBS हिंदी से आपके लिए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है वृशाली जैन ने।